મહાબંધ પુસ્તક 4 લેક્ચર નંબર 15 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વચ્છાયાણં નમો લોયે સૌવસાહુણં ભૂતબલી પ્રણીતં તં બંધતત્વ પ્રકાશકં મહાધવલ વિખ્યાતં મહાબંધં નમામ્યહં. આચાર્ય શ્રી ભૂતબલી ભટ્ટારક પ્રણીત યહ મહાબંધ નામ કા સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર હૈ જો ષટખંડાગમ કા 6 નંબર કા ખંડ હૈ. ઇસમેં તૃતીય અનુભાગ બંધ અધિકાર ચલ રહા હૈ ઓર ચૌથી પુસ્તક કે પૃષ્ઠ સંખ્યા 56 પર હમ આગે 56. यहाँ हम अंतर की प्ररूपना देख रहे हैं. एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अंतर और मार्गणाओं में देखते हुए अभी हम संगी मार्गणा में देखेंगे. नीचे लास्ट लाइन संगी जीवों में पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के समान भंग है. यहाँ संगी की जो काय स्थिति है उसको लेना चाहिए यानी चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध सॉरी अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 100 सागर पृथक्त्व है. बाकी संगी में तो वेदिनी नाम गोत्र का उत्कृष्ट तो क्षपक में होगा, उसके उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा. अनुत्कृष्ट का अंतर कैसे होगा? 11वें में वेदिनी नाम और गोत्र अनुत्कृष्ट का अंतर जगन्य एक समय. ऐसे तो जगन्य एक समय क्षपक होता है ना उत्कृष्ट, इसलिए अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर 11वें गुणस्थान की अपेक्षा. आयु में तो संगी जीवों में जब आयु का उत्कृष्ट कहेंगे वो 33 सागर की बातें होगी यानी उसमें भी जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर 100 सागर पृथक तो होगा. असंगी जीवों में 7 कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है. उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि उत्कृष्ट करने वाला तो असंगी पंचेंद्रिय होगा और एक इंद्रिय में जाने पर उसका अनुत्कृष्ट होता रहेगा, वो उत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा. अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 2 समय है, क्योंकि मात्र 2 समय तक ही लगातार उत्कृष्ट हो सकता है, वो अनुत्कृष्ट का अंतर होगा. आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 1 पूर्वकोटि का कुछ कम त्रिभाग है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग यहाँ नरकायु में होगा, असंगी पंचेंद्रिय करेगा, नरकायु बांधेगा उत्कृष्ट तो एक ही भाव में बांधेगा, क्योंकि नरकायु बांधकर तो उसकी असंगी मार्गणा छूट जाएगी. ये हमने देखा था, उसके स्वामित्व में देखा था. अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 पूर्वकोटि, यानी पूर्वकोटि के 2 भाव लेना. पहले भाव में 1/3 में बाकी था तभी आयु बांधी और दूसरे में अंत में असंक्षेपाधा में आयु बांधी, यानी 1.5 1/3 पूर्वकोटि कुछ कम. इसी का विशेषण असंगी जीव को पहले पूर्वकोटि के त्रिभाग में आयु कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध करा के पुनः पूर्वकोटि के आयु वाले असंगियों में उत्पन्न कराकर, यानी असंगी पंचेंद्रिय की इतनी लंबी बड़ी आयु हो सकती है पूर्वकोटि के, अंत में आयु बंध करावे जब वो असंक्षेपाधा काल बाकी छोड़कर, और इस प्रकार आयु कर्म के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर साधिक 1 पूर्वकोटि ले आवे, शेष कथन सुगम है. तीर्यन असंगी तीर्यंच में ही होता है ना, असंगी पंचेंद्रिय होगा, असंगी पंचेंद्रिय को ही लेना है उत्कृष्ट बांधने, और उसी की पूर्व कोटि की आयु हो सकती है, क्योंकि अन्यत्र द्विंद्रिय तीन्द्रिय की इतनी लंबी आयु नहीं है किसी की, असंगी पंचेंद्रिय की है। अब आहारक जीवों में, आहारक अनाहारक जो है उसमें, पर ये तो स्वामी योग के समान है, परंतु उसकी काय स्थिति लेना, तो चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, यानी दो उत्कृष्ट के बीच में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया, और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाणे, यानी लगातार आहारकपने रहने का काल, आहारक यानी विग्रह गति में रुजुगति से ही जाता रहा, हर बार मरकर रुजुगति से गया। ये अंगुल का असंख्यात भाग का अर्थ कितना है, असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी उत्सर्पिणी। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल ओघ के समान है, यानी ग्यारहवें गुणस्थान में अंतर्मूर्त का अंतर पड़ सकता है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग ओघ के समान है, यानी उत्कृष्ट का अंतर नहीं है, और अनुत्कृष्ट का अंतर ग्यारहवें में घटित हो जाएगा एक समय से लेकर अंतर्मूर्त तक। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, यह अनुत्कृष्ट का एक समय जब घटित करेंगे ना, तो एक समय के लिए ग्यारहवें में रहा और रुजुगति से देव में गया, इस तरह से लेना पड़ेगा। आहारक का आहारक रखना है बस इसको, देखो देखो वेदनीय नाम और गोत्र का आयु के लिए, सॉरी आयु के लिए नहीं, वेदनीय नाम और गोत्र के लिए उप के समान भंग, उसका अर्थ क्या है, अनुत्कृष्ट का जघन्य का अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, यानी वो ग्यारहवें में एक समय के लिए बंध नहीं किया था, मरकर देव में गया तो वहाँ बंध किया, पर देव में गया तो रुजुगति से जाना चाहिए। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, जब हम ओघ में देखते थे अर्ध पुद्गल परावर्तन बताया था, यहाँ इसकी काय स्थिति लेनी आहारक जीवों की, आहारक पने बने रहने का काल बड़ा काल। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का आयु के अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर काल ओघ के समान है, एवं साधिक तेतीसागर, क्योंकि यहाँ वंथर पूर्व कोटि और वहाँ तैतीस सागर लेना, नरक की भी हो सकती है ना, अनुत्कृष्ट कुछ भी हो सकता है, देव की भी अनुत्कृष्ट, नरक की भी अनुत्कृष्ट, यानी देव की तैतीस सागर की बांध सकता है, पर उत्कृष्ट अनुभाग बंध नहीं किया ऐसा, यानी अंतर कब हुआ का, तैतीस सागर का बंध करके रुक गया तो अनुत्कृष्ट का अंतर चालू हो गया, अभी इसकी आबादा के बाद वो देव में गया, देव ने लास्ट में आयु के अंत में जाके मनुष्य आयु बांधे, तो साधिक तैतीस सागर पूरा नहीं लेंगे, पर यहाँ वंथर पूर्व कोटि भी पूरा नहीं लेंगे, तो ये वंथर पूर्व कोटि और तैतीस सागर दोनों में से कुछ कम करना है, यानी अंतर्मूर्त कम करना है, पर दोनों मिलकर कितना होगा, साधिक तैतीस सागर। देखो विशेषार्थ, आहारकों की उत्कृष्ट काय स्थिति अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ चार घाती कर्म और आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अंतरकाल कहा है, शेष कथन सुगम है। इस प्रकार उत्कृष्ट अंतर समाप्त हुआ। ये अभी तक तो हम उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर देख रहे थे एक जीव की अपेक्षा, अब हमको जघन्य की बात सोचनी, अब उल्टा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जघन्य में ज्ञानावरणादि का जघन्य तो शपक में होगा, हाँ वेदनीय नाम गोत्र का जघन्य, तो अभी गोत्र का छोड़ो, जघन्य सातवें नरक में होता है, अदरवाइज वेदनीय और नाम का मध्यम परिणाम में होता है, आयु का भी जघन्य मध्यम परिणाम। अब देखेंगे हम यहाँ पर, देखो जघन्य का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओ और आदेश। ओ से चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो क्षपक्य होता है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख, ये ग्यारहवें गुण स्थान में होगा। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि हमने देखे थे मध्यम परिणाम जो है इसका जघन्य होता है, लौटकर असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद लौटकर फिर उसका जघन्य होगा ही होगा। और जघन्य असंख्यात लोक उन्होंने यहाँ इसी पहले विशेषात में ऐसा लिया कि वो सूक्ष्म में जाता है इसलिए असंख्यात लोक, परंतु हम ऐसा भी देख सकते हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद वे परिणाम जरूर होंगे लौटकर, इसे दो ही तरह से उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि एकेंद्रिय में रहने का अनंत काल है, फिर भी वहां लौटकर असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद वो जघन्य होगा ही होगा। यानी अनुभाग बंध के पूरे सभी जो स्थान है अध्यवसान स्थान उसके असंख्यात लोक प्रमाण है, तो इतने काल के बाद लौटकर वो परिणाम होंगे उसके, क्योंकि इसका मध्यम परिणाम तो एकेंद्रिय भी करते हैं और पंचेंद्रिय भी करते हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा से नहीं सोचना है हमको। अजघन्य का तो हमने उपशम श्रेणी में देखा था, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। हाँ, ग्यारहवा गुण स्थान। ऐसे अजघन्य का एक समय काल हो सकता है, और जघन्य का उत्कृष्ट काल कितना था हमने चार समय देखा काल, तो अजघन्य का अंतर केवल चार समय नहीं कहेंगे, अंतर्मुहूर्त ग्यारहवें में देखेंगे। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का भंग वेदनीय कर्म के समान है, अभी हमने हाँ एक समय से असंख्यात लोग, क्योंकि आयु जब बन रही है तो जघन्य अजघन्य कुछ भी बन सकती है, तो एक समय के अंतर से लेकर असंख्यात लोक अंतर हो जाएगा। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर सादिक 33 सागर है। पहले हमने देखा था उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की बात देखी थी, वो अनुत्कृष्ट के लिए भी सादिक 33 सागर दिया था, यानी आयु बंदी बस इतना ही लेना, यानी जैसे हमने अनुत्कृष्ट के लिए देखा था बंथर पूर्व कोटि आयु बांधी अजघन्य थी और फिर लौटकर 33 सागर के बाद बांधी। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है, देखो इन्हें वो सातवें नरक का नारकी को लेना सम्यक के सन्मुख। हाँ, उस दिन अश्विन भाई ने पूछा था ना कि वो तो उपशम समय को ही लेना, हाँ निज गोत्र का, पर उपशम समय को की जरूरत नहीं ना, अंतर मुहूर्त प्राप्त कर रहा है उसका अर्थ क्या है, वेदक समय को भी हो सकता है। हाँ, और उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी सातवें नरक में ही होता है वो सम्यक के सन्मुख जीव के, ऐसे ले सकते हैं सातवें नरक में अर्ध पुद्गल परावर्तन का अभी थोड़ा काल बाकी है उसका, कुछ साल बाकी है, तो सातवें नरक के अंत में जाके उसने अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक को प्राप्त किया, फिर मिथ्यात्व तो में गया तिरेचा भी बांधकर पंचेंद्रीय तिरंज हुआ, एक भव तो पंचेंद्रीय तिरंज का करेगा, वहां सम्यक तो नहीं हो सकता, फिर मनुष्य में गया, फिर सम्यक तो संयम सब प्राप्त करके क्षपक श्रेणी चढ़ गया छोटी आयु के साथ, तो ये कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, ये पहली बार उसने सातवें नरक में ही सम्यक तो प्राप्त किया था, इतना काल घूमा मिथ्यात्व में घूमा और हाँ और घुमा अन्यत्र, उसने समय तो प्राप्त किया होगा पर नरक सातवें नरक में नहीं आया। असंख्यात बार तो कभी भी हो सकता है, परंतु अंत में फिर सातवें नरक में फिर भी लास्ट में पाया, फिर मत्स्य में जाया, फिर एक पंचनीर का भोग करके फिर मनुष्य में गया। पंचनीर तीर्यंच का, क्योंकि ये नियम है ना, सातवें नरक से निकलेगा तो मिथ्यात्व में ही निकलेगा। एक बार वह तो हिंसा श्वापद में ही जन्म लेगा और उस भूमि उसको समय तो नहीं होगा। यानी कैसी बात है, सातवें नरक में कुछ कम 33 सागर तक समय तो बना रह सकता है और वहां से निकलकर उस भूमि उसको समय तो नहीं होगा। अब गोत्र कर्म के अजघन्य अनुभाग बंद का, जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख, ये भी 11वें विघटित होगा। इसी प्रकार अचक्षुदर्शनी और भवी जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ चार घाती कर्मों का, वो तो हुआ है घाती करना, चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंधक क्षपक श्रेणी में होता है। क्षपक श्रेणी कहने से मोहनीय का 9वें के अंत में और बाकी तीन का तो 10वें के अंत में, अतः ओग से इनके जघन्य अनुभाग बंध के अंतरकाल का निषेध किया है। उपशम श्रेणी में चार घाती कर्मों का कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक बंध नहीं होता। हम जो 11वां लिखते हैं वो तो तीन घाती कर्म के, और 10वां ले सकते हैं तो मोहनी के लिए 10वें में एक मरण हो सकता है उसका। इसके बाद पुनः उनका यथा योग्य अजघन्य अनुभाग बंध होने लगता है। इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त कहा है। वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध बादर पर्याप्त एक इंद्रियों के भी हो सकता है, यानी वहां तक होता है, परंतु सूक्ष्म के नहीं होता ऐसा यहाँ लिया है, इसलिए वो असंख्यात लोग घटित कर हमेशा है। और इनका उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है। यही कारण है कि ओग से इनके जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इनके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, जघन्य के बीच में अजघन्य हुआ, क्योंकि मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, इसलिए जघन्य का अंतर एक समय घटित हो सकता है, तथा अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, वो एक समय तो कहीं पर भी मध्यम परिणाम में भी हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है, वो भी 11वें में ही हमको घटित करना। गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध सातवीं पृथ्वी के नारकी के सम्यक्त्व के अभिमुख होने पर होता है। यह अवस्था पुनः कम से कम अंतर्मुहूर्त के बाद या अधिक से अधिक कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाद उपलब्ध होती है। इसलिए ओग से इसके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है, शेष कथन सुगम है। यानी जितनी विशुद्धि उसके उपशम सम्यक्त्व के काल में होगी अंत में, उतनी ही वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करने के वहां पर भी होगी, क्योंकि वहीं पर उसका जघन्य हो रहा है। अब ये तो बात हमने ओग से देखी, अब मार्गणाओं में देखते हैं। पहले गति मार्गणा की अपेक्षा नारकियों की बात करेंगे। नारकियों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। अब ये चार घाती कर्मों का जघन्य किसके होगा? विशुद्ध में जघन्य होगा, सम्यक दृष्टि नारकी सम्यक दृष्टि सर्व विशुद्ध को इसका जघन्य होता है। तो एक बार जघन्य किया, फिर अंत में जाके अंतर्मुहूर्त पहले सम्यक्त्व में फिर उसने जघन्य किया, इसलिए कुछ कम 33 सागर बताए। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है। यानी ये तो हर समय बनती रहती है, अजघन्य यानी नहीं बंधे कब होगा? जब वो जघन्य कर रहा है, तो जघन्या लगातार कितने समय तक होता है? तो दो ही समय तक होता है, इसलिए उत्कृष्ट अंतर दो समय बताया। वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। वेदनीय नामकर का तो मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, तो उसने जघन्य किया ही नहीं, तो जघन्य नहीं किया तो अजघन्य करता रहा। तो एक बार उसने शुरुआत में अजघन्य किया है, सॉरी जघन्य अनुभाग बंद का शुरुआत में जघन्य किया और अंत में जाके फिर जघन्य किया। अजघन्य अनुभाग बंद का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर चार समय। चार समय क्यों कहा? जघन्य का काल चार समय है, अदरवाइज इसका अजघन्य का बंध न हो ऐसे कभी नहीं बन सकता। तो चार समय तक लगातार जघन्य किया तो अजघन्य का अंतर हो गया। आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 6 महीना। कुछ कम 6 महीना तो पहले और आठवें अपकर्ष के बीच में, और एक समय तो कहीं भी रुक जब बांध बन रहा है तो कहीं पर भी एक समय का अंतर हो सकता है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है, मैंने दो बार सम्यक तो प्राप्त किया अंतर मुहूर्त के अंतर से, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। जघन्य का अंतर और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर भी एक ही समय है। ये महत्व की बात है, क्योंकि उसका जघन्य जो जघन्य केवल एक समय तक ही होता है, करण लब्धि अंतिम समय में, यानी सम्यक तो सन्मुख के अंतिम समय में जघन्य होता है, तो उसी एक समय के लिए उसके अजघन्य का अंतर हो सकता है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, ऊपर की 6 पृथ्वियों में वही भंग है, इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्र कर्म का भंग वेदनीय के समान है, यानी गोत्र का भी जघन्य मध्यम परिणाम में होगा, और अपनी अपनी स्थिति लेना ऊपर के नरकों में, तथा अपनी अपनी कुछ कम स्थिति कहनी चाहिए। कुछ कम इसलिए कि शुरुआत में पर्याप्त होने पर उसने जघन्य किया और अंत में एक बार जघन्य किया। विशेषार्थ, नरक में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध असंयत समय दृष्टि के होता है, और इसका उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर कहा है। एक्चुअली सम्यक्त्व का अंतर ही लिखना चाहिए, जरूरी नहीं था सम्यक्त्व में बना रहा तो भी शुरुआत में उसने जघन्य किया और अंत में जघन्य किया, यानी सम्यक्त्व का काल भी कुछ कम 33 सागर है, वैसा भी सोच सकते हैं। यहाँ सम्यक्त्व पहली बार शुरुआत में प्राप्त किया, अंत में प्राप्त किया और वहां पर उसने जघन्य किया। वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि दोनों के परिवर्तमान मध्यम परिणामों से होता है, तथा गोत्र का सातवें नरक में सम्यक्त्व के अभिमुख हुए जीव के होता है। सातवें नरक के प्रारंभ में और अंत में इस व्यवस्था को प्राप्त कर कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध संभव है, इसलिए इन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का भी कुछ कम 33 सागर उत्कृष्ट अंतर कहा है। गोत्र कर्म का एक बार जघन्य अनुभाग बंध होने पर, यानी सम्यक्त्व के सन्मुख वाले दिन, पुनः वैसी योग्यता अंतर्मूर्त काल के पहले नहीं आती। ये अंतर्मूर्त में कैसे आएगी योग्यता? क्योंकि सम्यक्त्व में रहने का काल अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में भ्रष्ट होकर फिर मिथ्यात्व में गया, और मिथ्यात्व में आते ही पहले तो संक्लेश परिणाम में आया है, फिर वो संक्लेश से वो विशुद्धि की ओर बढ़ेगा और विशुद्धि के बाद फिर सम्यक्त्व प्राप्त करेगा। तो सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त मिथ्यात्व का अंतर्मूर्त दोनों मिलकर भी अंतर्मूर्त हो गए। इसलिए इसके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त कहा है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल, काल की बात है, जघन्य का काल एक समय, इसलिए इसके अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। जब वो जघन्य कर रहा है तब भी अजघन्य का अंतर होगा। जो जघन्य का काल है वो अजघन्य का अंतर हो जाता है। सातवीं पृथ्वी में यह ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, क्योंकि कुछ कम तैतीस अगर वो सातवें नरक की अपेक्षा से सामान्य नारकियों के लिए बताया था, इसलिए उसमें सामान्य नारकियों के समान अंतरकाल कहा है। हाँ, प्रारंभ की छह पृथ्वियों में यानी ऊपर के छह नरकों में गोत्र कर्म की वेदनी और नाम कर्म से स्वामित्व की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है, यानी उसका भंग वेदनी और नाम कर्म के समान है, यानी वो मध्यम परिणाम में समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि उसका जघन्य कर सकता है। इसलिए इनमें और सब अंत तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सामान्य नारकियों के समान है, पर गोत्र कर्म की अपेक्षा यह अंतर वेदनीय के समान है, यानी शुरुआत में किया और अंत में अपनी स्थिति के अंत में एक बार किया, शेष अंतर काल को विचार कर ले आना चाहिए। अब ये तो हो गई नारकी की मार्गणा। तीर्यंचों में अब यहाँ हम बात जघन्य की कर रहे हैं। तीर्यंचों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उसका जघन्य कौन करेगा पहले ये नक्की करना है। संहिता संयत करेगा। हाँ, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी पहली बार तीर्यंच में ही सम्यक को प्राप्त किया ऐसा जीव लेना है, और अर्धपुद्गल परिवर्तन तक तीर्यंच में ही रहा, अब यहाँ से निकलकर मनुष्य होकर मुख जाने वाला ऐसा जीव लेना है, यानी वो भी संहिता संयत होगा, फिर मिथ्यात्व में जाएगा और मिथ्यात्व में मनुष्यायु बांध कर निकलेगा। संहिता संयत के साथ निकलेगा तो कुछ कल्याण की तो आयु बांधेगा कि नहीं, मिनिमम भी देवायु, तो संहिता संयत में आयु नहीं बंधन है उसकी, और उसके पहले भी आयु नहीं बनती, क्योंकि अगर मनुष्यायु बंधेगी तो संहिता संयत नहीं होगा वो, इसलिए संगी हुआ है आयु के अंतर्मूर्त, अंत के अंतर्मूर्त पहले उसने संहिता संयत प्राप्त किया, मिथ्यात्व तो में गया है, बाद में मनुष्यायु बांधी, क्योंकि हमको अर्धपुद्गल में से थोड़ा ही काल कम करना है, इसलिए अंतर बढ़ाना है, इसलिए हाँ कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी, अंतर हमको अंतर की बात देखनी है ना, और बड़े से बड़ा अंतर लाना था। अब अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर दो समय, क्योंकि जघन्य का लगातार काल दो समय ही हो सकता है, वो जघन्य कर रहा है तो अजघन्य का अंतर हो जाएगा। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओघ के समान है, ओघ के समान यानी वो मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, तो एक समय से असंख्यात लोप हो जाएगा अंतर उसका। और अजघन्य अनुभाग बंध का तीर्यंच की बात है, तो अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर चार समय है। हाँ, वो जघन्य का काल चार समय का है। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ओघ के समान है, क्योंकि जघन्य कर जघन्य कराना है ना, आयु नहीं बांधी ऐसी बात नहीं, जघन्य तो एक समय से असंख्यात लोक हो जाएगा उसके भी। और अजघन्य अनुभाग बंध का काल अनुत्कृष्ट के समान है, जैसे हमने प्रकृति बंध का अंतर जो हम देखेंगे, आयु का बंध होना चाहिए बस इतना ही, यानी यहाँ वंसल पूर्व कोटि अब तीर्यंच में रखना है, अब देव में तो नहीं भेज सकते, तो पूर्व कोटि का भाव और तीर्यंच का बड़ा भाव यानी तीन पल्ले को रखेंगे। तो तीन इंच के अनुत्कृष्ट के समान बता दिया उन्होंने, यानी वंथर, पूर्व कोटि और तीन पलिया। देखो हमने अनुत्कृष्ट में देखा था 45 पेज पर देखा था, 45 वो तीर इंच के नीचे के दूसरे पैराग्राफ में तीर इंचों की मार्गना है, ये उत्कृष्ट का प्रकरण था वहां पर, मिला क्या? देखो नीचे से तीसरी लाइन, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का तो छोड़ दो, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जगन यंत्र एक समय, उत्कृष्ट अंतर साधिक तीन पल्ले, और जगन अनुभाग बंध का अंतर ओ के समान ने एक समय से असंख्यात लोग देखा था हमने, आयु के लिए भी ऐसा ही लिया था ना, ओग में अभी हमने देखा था जगन्य का प्रकरण था, 58 पेज पे ही बताया था। वेदनी के समान बता चुके थे असंख्यात लोग, एक समय से असंख्यात लोग, ऐसे यहाँ पर वीर्यंचों में ऐसा ही लेना है। तो देखो अभी हमने आयु की बात पढ़ी ना, और जगन्य के अनुत्कृष्ट के समान है वो भी बात देखी, वंतर, पूर्व कोटि और तीन पल्या, गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। यो जगन्य कौन करता है? तो बादर, अग्नि काय किया, वायु का एक पर्याप्त। अब वो अन्य कायिकों में गया, क्योंकि वनस्पति का एक में अकेले में ही रहने का काल अनंत काल है। बादर, बादर अग्नि वायु लेना है यहाँ पर, उनको छोड़कर अन्य पर्याय में घूमा।
अच्छा,
देखो देखो जगन्य किसके होता है ये नक्की करो, गोत्र कर्म का जगन्य अनुभाग बंध का अंतर देखना है, वो करने वाला कौन है? अग्नि का एक, वायु का एक, तो दो जगन्य के बीच में अजगन्य करेगा तो एक समय का अंतर हो गया। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, क्योंकि उसने जगन्य किया, फिर अग्नि का एक मर कर किया, वायु का एक जिसने किया था वो अन्य कायिकों में जन्मा, पृथ्वी का एक हुआ, वनस्पति का एक हुआ, जल का एक हुआ, कभी चिरंचो में रहा, पंचेंद्रिय तक कोई भी चिरंचो हुआ, तो लौट कर फिर उसी पर्याय में आने को असंख्यात पुद्गल परावर्तन चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं जगन्य का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, और अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर दो समय। देखो बहुत सी प्रकृतियों के जगन्य के लिए चार समय कहते हैं, परंतु यहाँ दो समय क्यों? क्योंकि सर्व विशुद्ध लेना है, जहाँ मध्यम परिणाम होते हैं वहाँ चार समय लेते हैं, और जहाँ सर्व विशुद्ध है, सर्व संक्रेश होते हैं वहाँ दो समय लेते हैं। अब ये तो सीरियन चेंज जनरल, हाँ जगन्य के चार समय यहाँ नहीं, मध्यम परिणाम के,
हाँ मध्यम परिणाम, हाँ सर्व विशुद्ध में दो समय,
हाँ दो समय यहाँ वेदिनी नाम के लिए चार समय लिए। और इसके गोत्र के लिए दो समय, एक या दो समय। अब ये हो गई तीर्यंच इन जनरल, पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, वही संयता संयत को, हाँ संयता संयत को लेना है, क्योंकि स्वामित्व नक्की करेंगे तो हमको खबर पड़ जाती है। और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, यानी पंचेंद्रिय में की उनकी काय स्थिति, त्रिक लिया ना तो तीर्यंचों में पंचेंद्रिय तीर्यंच इतना ही लेंगे हम सामान्य से, तो उसके तो 96 पूर्व कोटियाँ होती है, और संयता संयत बताना है तो तीन पल्ले में नहीं बेच सकते हम, क्योंकि तीर्यंचों में भोगभूमि वाले के पांचवा गुण स्थान नहीं होता। तो पूर्व कोटि पृथक तो जो है पहले तो 96 पूर्व कोटियाँ होगी, जो तीर्यंच पर्याप्त में केवल पर्याप्त उनके वो 48 पूर्व कोटियां होगी। और तिर्यंचनी में संगी असंगी के 8 अरब 16 पूर्व कोटियां होंगी। तो सामान्य से कथन क्या, पूर्व कोटि पृथक और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, जब उसने जघन्य किया तो अजघन्य का अंतर हो गया। और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, क्योंकि लगातार जघन्य दो समय तक ही हो सकता है। हमने देखा ना सर्व विशुद्ध संहिता संयत वाले के होगा, वेदनीय और नाम कर्म के। अब ये मध्यम परिणाम में जघन्य होते हैं, जघन्य अनुभाग बंध का अंतर, जघन्य अंतर एक समय है क्योंकि एक समय के लिए अजघन्य किया। और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्ले है, यहाँ 3 पल्ले वाले को लिया, क्योंकि मध्यम परिणाम तो 3 पल्ले वाले को भी हो सकते हैं। सर्व विशुद्ध में संयता संयत को लेना था, यहाँ तो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ 3 पल्ले वाले ऐड कर देगा। यानी यहाँ तो हम कहेंगे 95 पूर्व कोटि प्लस 3 पल्ले, 48 पूर्व कोटि में 47 पूर्व कोटि और 3 पल्ले, 16 के बदले 15 पूर्व कोटि और 3 पल्ले, इस तरह से हम देख सकते हैं। ये तो बात हुई जघन्य का अंतर और जघन्य अनुभाग बंध का। जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 4 समय। जघन्य का जो काल है उत्कृष्ट, वो अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर बन सकता है। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, जब बांध रहा है तो एक समय के लिए बीच में और जघन्य करके फिर जघन्य किया। और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, ये जो अभी हमने पूर्व कोटियों का उनकी उत्कृष्ट काय स्थिति देखी थी, वो शुरुआत में और अंत में उसने जघन्य का बंध किया। अजघन्य अनुभाग बंध का, अभी इसमें तो दो ही भाव ले सकते हैं, अंतरकाल अनुत्कृष्ट के समान है, यानी साधिक 3 पल्ले कहेंगे, क्योंकि अनुत्कृष्ट ही आयु बांधी। और कौन सी बांधनी वो भी हमारे यहाँ का विषय नहीं, यहाँ तो मूल प्रकृति की बात चल रही। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, वो करने वाला तो अग्नि का एक वायु का एक है, बीच में एक समय के लिए अजघन्य किया। और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोठी पृथक्त्व प्रमाण है, अपनी अपनी काय स्थिति, शुरुआत में जघन्य किया और अंत में जघन्य किया। जब शुरुआत में देखना है तो पर्याप्त होने पर किया उसने। अब यहाँ तिर्यंचों में तो हमको अग्नि का एक वायु का एक बादर पर्याप्त को लेना है। अब गोत्र कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 4 समय है। पंचेंद्रिय तिर्यंचों में बात हो रही थी ना, अग्निकाय वायुकाय को यहाँ नहीं लेना है, नहीं लेना, सॉरी सामान्य तिर्यंचों में लेना था। यहाँ गोत्र कर्म में तो वेदनीय नाम के समान ही है, पंचेंद्रिय तिर्यंच है ना, ये अग्निकायिक वायुकायिक हमने सामान्य तिर्यंचों में लिया था, यानी मध्यम परिणाम में वो जघन्य होगा। नहीं नहीं नहीं, पंचेंद्रिय बीच में शुरू हुआ, मैं भूल गई, हाँ मध्यम परिणाम में होगा, इसलिए 4 समय तक हो सकता है। वो तो बराबर है, हाँ यानी उसके मध्यम परिणाम वैसे नहीं हुए, शुरुआत में हुए लास्ट में हुए। विशेषण तिर्यंचों में 4 घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध संयता संयत के होता है, और संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अतः यहाँ यानी तिर्यंचों में संयता संयत, अतः यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है, ये कुछ कम उसमें लगा देना। तीर्यंचों में गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध बादर अग्निकाय का और बादर वायु का एक जीव के होता है वो पर्याप्त में, तथा इनका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। अनंत काल यानी वो अन्य कायिकों में घूमा, इसलिए यहाँ गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। पंचेन्द्रिय तीर्यंच त्रिक में संयता संयत गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर, अभी पहले तो तीर्यंच में देखा था तो अनंत काल बताया था, पंचेन्द्रिय तीर्यंच त्रिक में अगर बताना है पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है, यहाँ तीन पल्ले वाली बात नहीं लेना, इसलिए इनमें चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। यानी वो पंचेन्द्रिय तीर्यंच में रहने के पहले भाव में संयता संयत प्राप्त करके जघन्य अनुभाग किया था चार घाती कर्मों का, और फिर बीच में मिथ्यात्व में रहा, पंचेन्द्रिय तीर्यंच त्रिक में घूमा और अंत में फिर दोबारा किया। यद्यपि इनमें यानी पंचेन्द्रिय तीर्यंच त्रिक में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण कहाँ है, सॉरी मैंने दूसरा वाक्य पूरा, एक मिनट, नीचे का, यद्यपि इनमें गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले पंचेन्द्रिय जीव के होते, यहाँ मिथ्या दृष्टि लिया क्योंकि गोत्र कर्म का जघन्य तो नीच कोत्र बांधने वाला लेना है, तो मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान वाला, क्योंकि सम्य दृष्टि नीच गोत्र बांधेगा ही नहीं और उच्च गोत्र का अनुभाग तो अनंत गुणा ज्यादा है, इसलिए हमको जघन्य में नीच गोत्र को लेना है। यहाँ क्या लिखा है, जघन्य अनुभाग बंध मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले पंचेन्द्रिय जीव के होता है, पर ऐसी योग्यता भूभूमि में संभव नहीं, इसलिए इनमें गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर भी पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा है। क्योंकि देखो ऐसा भी वो मध्यम परिणाम नहीं होते वो बात नहीं लेना है, बहुभूमि में तो देवगति ही बनती है, देवगति के साथ उच्च गोत्र ही बंधेगा, ये कारण है। यह मिथ्या दृष्टि भी है, परिवर्तमान मध्यम परिणाम भी है, परंतु यहाँ देवगति ही बनती है उच्च गोत्र के साथ बहुभूमि में, देवगति के साथ उच्च गोत्र ही बनता है, इसलिए गोत्र का जघन्य बंध वहां संभव नहीं। क्योंकि हमने एक जघन्य में हम नीच गोत्र को लेते हैं, और यहाँ उच्च गोत्र को ही लेना है क्योंकि मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला भी जो होगा तो देवगति बांधेगा, उच्च गोत्र ही बांधेगा, वहां उनके लिए तो ध्रुवबंदी प्रकृति है भोगभूमि वालों के लिए, और उच्च गोत्र का कितना भी जघन्य क्यों न बंधे वो निज गोत्र के जघन्य से तो अनंत गुना ज्यादा होगा, ये कारण है उसका। यानी उन्होंने ये जो लिखा है ना ऐसी योग्यता भूमि, या इसी योग्यता के लिए हमने बात ये लिखवाया, देखो इसलिए वहां पूर्वकोटि पृथक्त्व ही कहा गोत्र में, और वेदिनी और नाम के लिए मध्यम परिणाम कहीं पर भी होंगे और वहां उनका जघन्य होगा। अब आयु की बात पहले बताई उन्होंने, आयु कर्म का जघन्य अनुभाग बंध भी यही कर्म भूमि के पंचेन्द्रिय तीर्यंच त्रिक के होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर भी उक्त प्रमाण का है। क्योंकि हमने देखा ना उसका जघन्य अनुभाग करने वाला जो जघन्य पर्याप्त अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान ऐसा वगैरह जीव लिया था। अगर पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्तों में और तिर्यंश अन्य में लगाना है तो जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान लेंगे हम, वो यहाँ पर ही पॉसिबल है। इसलिए वहाँ आयु में भी देखा था पूर्व कोटि पृथक को। मात्र वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग का बंध भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों के संभव है, और वो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी हो वो हो सकता है। इसलिए इनके जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य का, यानी अंतिम भव उसका तीन पल्य का रखना, क्योंकि वो वहाँ से अभी उसको देव में जाएगा, इसलिए भोग भूमि को लास्ट में रखना है। इन सब स्थलों में उत्कृष्ट अंतर लाते समय प्रारंभ में और अंत में जघन्य अनुभाग बंद कराकर यह अंतरकाल ले आना चाहिए। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए, अन्यत्र यानी जहाँ वो काय स्थिति लेनी है वैसा। शेष कथन सुगम है इसलिए उसका अलग से निर्देश नहीं किया। अब पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्तकों में, अब अपर्याप्त एक ही गुणस्थान है और वहाँ उसके संकलेश और विशुद्धि इस तरह से देखना है, उसकी काय स्थिति भी अंतर्मूर्त की होगी, तो चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। एक समय के लिए उसने अजघन्य किया ये हो सकता है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त यानी उसी पर्याय में लगातार रहता है। पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्त, तो अपर्याप्तों के कितने भव करेगा वो? पंचेंद्रिय तिर्यंश है वो, संगी के आठ और असंगी के आठ, क्योंकि आठ तो मनुष्य के हो जाते हैं, पंचेंद्रियों के 24 ही भव है ना, उसमें से संगी असंगी के आठ आठ 16 भव। अब अंतर्मूर्त के ये अपर्याप्तकों के 16 भव, वो भी अंतर्मूर्त ही कहलाएगा। अब अजघन्य अनुभाग बंध का, अजघन्य का अंतर कब होगा? जब वो जघन्य कर रहा है, तो जघन्य अंतर एक समय होगा, उत्कृष्ट अंतर दो समय है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के तीनों को एक साथ लिया, जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, ये मध्यम परिणाम से होता है। यानी अंतर्मूर्त तक उसने अजघन्य किया, फिर लौटकर, क्योंकि अपर्याप्तों की लौटकर की बात नहीं, वो अपर्याप्तों की काय स्थिति अंतर्मूर्त है। इसलिए वेदीय नाम गोत्र कर्म के भी दोबारा जघन्य कराना है, इसलिए अंतर में अंतर्मूर्त है। ये जरूरी नहीं कि वो दूसरी बार जघन्य करेगा ही करेगा। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर चार समय, जब वो जघन्य कर रहा है तभी अजघन्य का अंतर होगा। आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, जब बंध हो रहा है तब बीच में जघन्य अजघन्य कहीं पर भी हो सकता है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त जब लिया है तो हमको वो तो इसकी भवस्थिति नहीं, दो आयु यानी दो बार दो भव लेना है, दो भव में मिलकर भी अंतर्मूर्त होगा। आप कहेंगे जघन्य नहीं बांधा, तो जघन्य के लिए काय स्थिति प्रमाण भी अंतर्मूर्त ले सकते हैं, और अजघन्य के लिए दो भव को अंतर्मूर्त ले सकते हैं। इसी प्रकार सब अपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए, इसी प्रकार क्यों कहा, क्योंकि उनकी भी काय स्थिति अंतर्मूर्त है, सूक्ष्म पर्याप्त की भी। आप कहेंगे सूक्ष्म अपर्याप्त, वो सब अपर्याप्त में आ गए। यानी ये अंतर्मूर्त वाली काय स्थिति है तो ये कथन सब जगह घटित होगा। अब मनुष्य त्रिक में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो क्षपक के होता है जघन्य, उसका अंतर नहीं होगा। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर में, यहाँ एक समय नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हाँ, मर कर जाएगा तो देव में जाएगा तो मार्गना बदल जाएगी, इसलिए पूरे ग्यारहवें में रखकर फिर नीचे लाना है। मोहनी के लिए तो दसवां ग्यारहवां दोनों लेना है। शेष कर्मों के अनुभाग बंध के अंतरकाल का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है। पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान जब कहते हैं तो उसकी काय स्थिति पूर्वकोटि पृथक है, ये समानता हो गई। इतनी विशेषता है कि वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि उसका जघन्य कहीं पर भी हो सकता है तो अजघन्य का अंतर एक समय होगा। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त बताया, जो ग्यारहवें में होगा, क्योंकि तिर्यंचों में अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर चार समय देखा था, वहां तो जघन्य बंध की अपेक्षा थी और यहाँ बंध ही नहीं हुआ ग्यारहवें में, उसकी अपेक्षा अंतर्मूर्त कहा है। विशेषार्थ, मनुष्य त्रिक में चार घाती कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल, जघन्य तो उसका तो अंतर नहीं है, अजघन्य के लिए उपशम श्रेणी में उपलब्ध होता है। तथा इसी प्रकार वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतरकाल भी उपशम श्रेणी में उपलब्ध होता है। अकेला ग्यारहवां गुणस्थान नहीं लिया, क्योंकि वो दस मुनि के लिए अपेक्षा दस ग्यारह फिर दस और तीन घाती के लिए केवल ग्यारहवां, इसलिए उपशम श्रेणी इन जनरल कह दिया। यतः उपशम श्रेणी में इन सबका बंध मनुष्य त्रिक में अंतर्मूर्त काल तक नहीं होता, अतः यहाँ चार घाती कर्मों के अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल तथा वेदनीय नाम गोत्र के अजघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट, वेदनीय नाम गोत्र के जघन्य अजघन्य का जघन्य काल नहीं कहा, अजघन्य का जघन्य काल तो एक समय होगा, क्योंकि वो तो मध्यम परिणाम में कहीं पर भी हो सकता है, और यहाँ अजघन्य का उत्कृष्ट अंतरकाल वो तो उपशम श्रेणी में अंतर्मूर्त लेना है। इस तरह से मनुष्य त्रिक की बात हो गई यहाँ पर। अब देवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर, क्योंकि चार घाती कर्मों का जघन्य सर्व विशुद्ध चौथे गुणस्थान वाले के होगा और देव की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, जब वो जघन्य कर रहा है तो अजघन्य का अंतर होगा, और उत्कृष्ट अंतर दो समय है, क्योंकि दो सर्व विशुद्धि दो समय तक हो सकती है। वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। वेदनीय नाम कर्म का जघन्य तो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहीं पर भी ले सकते हैं, मध्यम परिणाम। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है, कुछ कम इसलिए क्योंकि वो तो सर्व विशुद्धि वाली जो है पर्याप्त होने पर होगी, इसलिए कुछ कम कर दिया उसमें। वेदिने नाम का अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर चार समय है, क्योंकि मध्यम परिणाम में जहां जघन्य होता है तो अजघन्य के लिए चार समय तक उसने जघन्य किया बीच में, तो उसका अंतर चार समय का हो गया। आयु कर्म का भंग नारकियों के समान है। नारकियों के समान है क्या है, जघन्य और अजघन्य का एक समय का अंतर और कुछ कम 6 महीना। हाँ, मार्गना बदलती है और एक ही भाव में 6 महीना पहले उसका बंध संभव है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का, अब गोत्र कर्म का जघन्य मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला करेगा। इसका मिथ्या दृष्टि लेना है ना, तो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर है, क्योंकि उसके ऊपर सारे सम्य दृष्टि देव ही है। यहाँ तक मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, रह सकते हैं। और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, अजघन्य का अंतर कब होगा, जब वो जघन्य कर रहा, तो उत्कृष्ट अंतर 4 समय है, क्योंकि मध्यम परिणाम में जघन्य हो रहा है। इसी प्रकार सब देवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में गोत्र कर्म का भंग 4 घाती कर्मों के समान, वहाँ एक चौथाई गुण स्थान है और गोत्र का जघन्य नहीं, वो एक उच्च गोत्र ही बनता है, तो उसका जघन्य कब बंधेगा। संकलेश में होगा, समय दृष्टि सारे ना अनुदिश अनुत्तर सारे समय दृष्टि है, उच्च गोत्र ही बन रहा है, तो गोत्र का जघन्य किसके होगा, तो उच्च गोत्र का जघन्य कब होगा, तो सर्व संकलेश में, तो सर्व संकलेश भी 2 समय तक रहेगा उसको, यानी 2 समय उसके, यानी जघन्य का अंतर कितना होगा, देखो इसका नहीं, यहाँ उच्च गोत्र ही बंधेगा, और सर्व संकलेश में जघन्य बंधेगा। यानी वो जघन्य का काल 2 ही समय होगा, जो अजघन्य का अंतर 2 ही समय होगा। दो समय उसका अंतर होगा। देखो विशेषार्थ में बताएंगे, 4 घाती के समान है, उसका अर्थ क्या है, यहाँ पर सर्व संकलेश में जघन्य है, तो जघन्य का लगातार काल 2 समय होगा, इसलिए अजघन्य का जघन्य अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर 2 समय होगा। जैसे ऊपर 61 पेज पर पहली लाइन में लिखा है ना, 4 घाती के लिए अजघन्य का जघन्य अंतर 1 समय, उत्कृष्ट अंतर 2 समय, वैसे यहाँ पर होगा। विशेषण, सामान्य से देवों में 4 घाती कर्म का जघन्य अनुभाग बंध समय दृष्टि के होता है, वो सर्व विशुद्धि वाले के होगा, तथा वेदनी और नाम कर्म का जघन्य अनुभाग बंध समय दृष्टि के भी होता है, भी होता है नहीं, मिथ्या दृष्टि के भी होता है, समय दृष्टि के भी होता है। अतः यहाँ इन 6 कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है। मात्र गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध मिथ्या दृष्टि के ही होता है, ही लगा है, और मिथ्या तो गुणस्थान अंतिम ग्रेविक तक ही उपलब्ध होता है, अतः यहाँ गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागर कहा है। भवनत्रिक आदि देवों में, यानी जब हम देवों के अगर डिविजन्स करते हैं, भवनत्रिक है, सदर्मेशान है, सनत कुमार महेंद्र है, जहाँ जो स्थिति हो उसे ध्यान में रखकर अपना अपना यह अंतरकाल ले आना चाहिए, यानी अपनी अपनी भवत स्थिति से कुछ कम। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध सम्यक दृष्टि के ही होता है, क्योंकि वह समय दृष्टि ही है ना, ये समय दृष्टि के ही होता है कहना बराबर नहीं है। यानी यहाँ सारे समय दृष्टि ही है, यानी यहाँ इतना ही लेना था कि सर्व संकलेश में जघन्य होता है, वो दो समय तक होगा, वो तो हमने पहले ही देख लिया। अब इंद्रिय मार्गणा की बात है, गति मार्गणा हमने चार गतियों और उसके भेदों की बात देख ली है, अब इंद्रिय मार्गणा की बात हम देखेंगे आगे। यहाँ पर यहाँ एकेंद्रियों में, अब एकेंद्रियों में सर्व विशुद्ध भी बाद एकेंद्रिय पर्याप्त होते हैं, सर्व संकलेश भी बाद एकेंद्रिय पर्याप्त होते हैं, केवल गोत्र का वो जो जघन्य करने वाला वो निज गोत्र का जघन्य बाद अग्नि का एक वायु का एक पर्याप्त करेंगे। देखो चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर दो समय है, यानी वो दो समय तक ही लगातार जघन्य कर सकता है। वेदनीय आयु और नाम कर्म का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है, इतनी विशेषता है कि आयु कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर प्रकृति बंध के अंतर के समान है। अब एक इंद्रियों में प्रकृति बंध जो लेना है आयु का 22,000 वाली आयु लेनी है, हाँ दो आयु की बात है, अजघन्य के लिए लगातार दो आयु लेना है तो साधिक 22,000 वर्ष हो जाएगा, यानी 1/3 और पूरा एक भव, कुछ कम कर देना बाकी वेदनी और आयु के लिए क्या लेना है, क्योंकि एक इंद्रिय लिया ना तो वेदनी और आयु का जघन्य किया, वेदनी और नाम करूँ, आयु की बात अभी इन्होंने बता दी, हाँ वेदनीय और नाम कर जघन्य किसके होता है, मध्यम परिणाम वाले की जघन्य, परंतु लौटकर असंख्यात लोक काल के बाद तो वो तो जघन्य होगा ही फिर दोबारा। आयु के अजघन्य की बात अलग थी, बाकी वेदनीय और नाम के अजघन्य के लिए तो एक समय से तो चार समय हो जाएगा, और जघन्य का उत्कृष्ट अंतर जो है सामान्य तिर्यंचों के समान यानी असंख्यात लोक हो जाएगा। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात उद्गल परावर्तन है, क्योंकि वो अग्नि का एक वायु को छोड़कर अन्य पर्याय में घूमा है, यानी पहले अग्नि का एक ने वो जघन्य किया, फिर अग्नि पर्याय में गया, एक इंद्रिय का एक इंद्रिय रहा, और वहां से लौटकर फिर अग्नि का एक वायु का एक होकर फिर उसने जघन्य किया, तो उसका उत्कृष्ट अंतर जो होता है असंख्यात पुद्गल परावर्तन वाला अनंत काल, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि वो अग्नि का एक में रहते हुए ही बीच में एक समय के लिए जघन्य किया, और उत्कृष्ट अंतर दो समय है। अब ये हो गए एक इंद्रिय इन जनरल की बात, बादर एक इंद्रिय यानी उसका जो डिवीजन है उसके बादर एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रियों में जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। वहां तो हमने कितना देखा था, असंख्यात लोग देखा था, भले उसकी काय स्थिति अनंत काल की है एक इंद्रियों की, पर असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद लौटकर वो मध्यम परिणाम हो गए होंगे। हाँ बादर एक इंद्रियों की तो छोटी है ना स्थिति, अंगुल का असंख्यात प्रभाव, और एक इंद्रियों में तो अनंत काल था, यह अंगुल का असंख्यात प्रभाव बहुत छोटा है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण तक उसका अंतर बन सकता है, यानी लोक के सामने अंगुल कितना छोटा है, लोक को तो असंख्यात गुणा किया और अंगुल को असंख्यात वे भाग किया, अब बादर एक इंद्रिय की हो गई, पहले सामान्य एक इंद्रिय लिया फिर बादर एक इंद्रिय लिया, अब कहते बादर एक इंद्रिय पर्याप्तकों में इनकी काय स्थिति संख्या 1000 वर्ष की होती, काय स्थिति जो जघन्य का अंतर हम उसको में ले सकते हैं, जघन्य का उत्कृष्ट अंतर। हाँ सूक्ष्म एक इंद्रियों में असंख्यात लोक प्रमाण है, ये उनकी काय स्थिति होगी। विशेषार्थ एक इंद्रियों में चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध बादर एक इंद्रियों के होता है, यानी बादर एक इंद्रिय पर्याप्त कौन के होगा, और बादर एक इंद्रियों का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण। इसलिए इनमें चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। सामान्य तीर्यंचों में वेदनीय आयु और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण उपलब्ध होता है। यह भी यहाँ इसी प्रकार बन जाता है। इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। ये ऊपर बताया था वेदनीय आयु और नाम को इकट्ठा लिया था, परंतु नाम में अजगन्य की प्रकृति बंध का अंतर लिया ना, दो भवों में तो बंधेगी बंधेगी नियम से। इसलिए इनके जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक। एक इंद्रियों में पृथ्वी का एक जीवों की उत्कृष्ट भव स्थिति ने एक भव 22,000 वर्ष है। यदि कोई एक इंद्रिय पूर्व भव के प्रथम त्रिभाग में आयु कर्म का अजघन्य अनुभाग बंद करके 22,000 वर्ष की आयु वाला पृथ्वी का एक होता है और वहां भव के अंत में अंतर्मृत काल शेष रहने पर अजघन्य अनुभाग बंद करता है, तो आयु कर्म के अजघन्य अनुभाग बंद का उत्कृष्ट अंतर साधिक 22,000 वर्ष उपलब्ध होता है। एक इंद्रियों में प्रकृति बंध का उत्कृष्ट अंतर इतना ही है। एक प्रकृति बंध का है ना आयु का, ये यहाँ कौन से प्रकृति बात हो रही है, एक इंद्रियों में रहते हुए आयु का बंध ही नहीं हो तो कितना अंतर हो सकता है, तो दो भाव लेना है ना, साधिक 22,000 वर्ष ले लेना है। यही कारण है यहाँ आयु कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर प्रकृति बंध के अंतर के समान है। जो प्रकृति बंध समझ रहे हैं, यहाँ हम अनुभाग बंध की बात देख रहे हैं, उसके पहले हमने स्थिति बंध की बात देखी, उसके पहली पुस्तक में प्रकृति बंध देखे थे। तो एक इंद्रियों में आयु का बंध ही न हो ऐसा उसमें अंतर कितना पड़ेगा, उसको कहेंगे प्रकृति बंध का अंतर। तो एक इंद्रियों के दो भाव लेना है, हर भाव में तो आयु बंधेगी बंधेगी, पहले भाव में 1/3 भाव बाकी था तभी बंधी, और दूसरे भाव में लंबी आयु वाले आयु के अंत में अंतर्मुख शेष रहा तब बांधी। यहाँ का 1/3 और वहाँ का पूरा, हम 22,000 वर्ष को पृथ्वी का एक को लेते हैं तो 22,000 वर्ष और इसमें 7,000 और कुछ बात एक्स्ट्रा हो गए, तो मिलकर सबका कथन क्या होगा, साधिक 22,000 वर्ष। यह प्रकृति बंध का भी अंतर इतना ही था, वही अजघन्य का भी अंतर होगा। एक इंद्रियों में गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध बादर अग्नि का एक और वायु का एक जीवों के होता है। इनका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, यानी वो बादर अग्नि वायु छोड़कर अन्य पर्याय में घूमा। इसलिए यहाँ गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। यह सामान्य एक इंद्रियों की अपेक्षा अंतर काल कहा है, सामान्य से एक इंद्रिय, क्योंकि जो पादर कहेंगे उसके पर्याप्त कहेंगे तो उनकी काय स्थिति अलग अलग होगी। बादर एक इंद्रिय, बादर पर्याप्त एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय की काय स्थिति क्रम से अंगुल का असंख्यात भाग वो बादर एक इंद्रिय के लिए, संख्यात 1,000 वर्ष वो बादर पर्याप्त एक इंद्रिय के लिए, और असंख्यात लोग तो सूक्ष्म एक इंद्रिय। सूक्ष्म एक इंद्रिय कहने से पर्याप्त अपर्याप्त इन जनरल लेना है, क्योंकि अकेले सूक्ष्म पर्याप्तों में रहने का काल अंतर्मूर्त है, अकेले सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त में रहने का भी काल अंतर्मूर्त है। तो देखो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त करते करते असंख्यात लोक बहुत बड़ा काल है, तो सूक्ष्म एक इंद्रिय की काय स्थिति है। इसलिए इनके अनुसार आठों कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतरकाल ले आना चाहिए, नहीं वो काय स्थिति के अनुसार ले आना चाहिए। शेष कथन सुगम है। अभी द्विंद्रिय की बात पढ़ लेते हैं। द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय जीवों में अभी उनकी काय स्थिति कितनी है, तो संख्या 1,000 वर्ष है, तथा उनके पर्याप्तकों में सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर संख्या 1000 वर्ष है, यानी उसके काय स्थिति में कुछ कम कर दे देना। इनमें जघन्य बंध कौन करेगा? तो सर्व विशुद्ध वाला है वो 4 घाती का जघन्य करेगा, और वेदिनी नाम गोत्र का कौन करेगा? तो मध्यम परिणाम वाला जघन्य करेगा। और अजघन्य अनुभाग बंध का भंग अपर्याप्त कुंभ के समान है, यानी 7 कर्मों के लिए मेरे ख्याल से 2 समय हो गए, वेदिनी नाम गोत्र के लिए 4 समय हो गए। वह जघन्य का है ना, मेरे 4 घाती के लिए 1 से 2 समय, और 3 अघाती के लिए 1 से 4 समय, इसलिए अपर्याप्त हुए समान कह दिया। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का भंग ज्ञानावरण के समान है, यानी उसकी अपनी काय स्थिति लेना है, जघन्य बंध ही नहीं किया बीच में, एक समय से लेकर अपनी काय स्थिति तक। और जघन्य के लिए प्रकृति बंध के समान कहना पड़ेगा, अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर प्रकृति बंध के अंतर के समान है, यानी यहाँ द्विंद्रिय का एक बड़ा भव 12 वर्ष का होता है, तो 2 भव लेना तो साधिक 12 वर्ष कहेंगे, 1/3 और पूरा, ऐसे हर एक के लिए अलग अलग होगा, उसको कहेंगे प्रकृति बंध का अंतर, यानी आयु कर्म का बंध ही न हो उसमें बीच में अंतर। विशेषार्थ, इन जीवों की काय स्थिति संख्या 1000 वर्ष है, यानी द्विंद्रिय अलग लेना, 3 इंद्रिय अलग लेना, 4 इंद्रिय अलग लेना, इसलिए इनमें 7 कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतरकाल संख्या 1000 वर्ष कहा है। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का उत्कृष्ट अंतरकाल इसी प्रकार बन जाते हैं, उसने जघन्य आयु बांधी नहीं ऐसा लेना, इसलिए इसके जघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल ज्ञानावरण के समान है, यानी संख्या 1000 वर्ष है। यहाँ प्रकृति बंध में आयु कर्म का जघन्य अंतर, यानी आयु बंधने का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, तथा उत्कृष्ट अंतर क्रम से साधिक 12 वर्ष, ये द्विंद्रिय में साधिक 49 दिन रात, वो 3 इंद्रिय में साधिक 6 महीना 4 इंद्रिय में, यानी उनका 1 भव प्लस 1/3 भव कुछ कम कर दे देना, इतना है। यहाँ आयु कर्म के अजघन्य अनुभाग बंध का यह अंतर इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इसके अजघन्य अनुभाग बंध का अंतरकाल प्रकृति बंध के अंतरकाल के समान कहा है, शेष कथन सुगम है, क्योंकि आयु बीच में बंधी नहीं, ऐसा होता है ना, तो 2 भव में एक एक बार बांधी उसने, पहले भव में त्रिभाग पहले और दूसरे भव में आयु के अंत में। अब यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत होई।